ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यं संपद्यजात्यजा मनुषै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं गीता में भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और सुख रहित संसार को प्राप्त करके मेरा भजन करो। संसार को अनित्य बताया और सुख रहित बताया। दोनों बातें क्यों कही? क्योंकि हमको संसार में नित्यता दिखती है और संसार में सुख का वहम पड़ता है। कितना ही सुन लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक हम स्वयं अपनी दृष्टि नहीं बदलेंगे तब तक ब्रह्मा जी भी हमारी दृष्टि नहीं बदल सकते। हमें ही हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। संसार में जो सुख का वहम हो रहा है ये हमारे लिए बहुत घातक चीज है। जहर में अमृत का भान हो रहा है, इससे बड़ा और हमारा कोई अज्ञान नहीं है। बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, उनको कोई भाषाओं का पूरा ज्ञान नहीं, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, परंतु उन्होंने संसार में सुख देखने वाली गलती नहीं की तो कोई बाधा नहीं आई, बल्कि अनंत अनंत प्राणियों का उद्धार किया। संसार में सुख की भ्रांति हो रही है, अब कैसे निकले ये हमारी भ्रांति? तो भ्रांति निकलने की बात तो बाद में देखें, पहले ये तो समझ में आए कि हम भूल में बैठे हैं। हम लोग भूल में हैं ये बात भी समझ में नहीं आती। एक दृष्टांत देते हैं कि एक कीड़ी थी, कीड़ी चींटी, उसने मिस्री का पहाड़ देखा तो उसने विचार किया कि जितनी चींटियां हैं ये फालतू दुख पाती है, कोई बिल में पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कोई लोगों के पैरों के नीचे आती है, सब चींटियों को बोल दूं कि आओ मिस्री का पहाड़ है, मीठा है ये, आओ तो सही, देखो तो सही। तो ऐसा सबको निमंत्रण दे दिया तो सब चींटियों ने देखा कि इसके कहने से चले तो जाएंगे पर वहां मिस्री का पहाड़ नहीं होगा, तो एक के कहने से कैसे जाए? तो कहा कि चले तो चलो, अपने खाने पीने की सामग्री साथ में लेके चलो। तो नमक की डली उन्होंने मुंह में रख ली, थोड़ा सा नमक है वो मुंह में रख लिया और उसके पीछे पीछे मिस्री के पहाड़ पर गई। तो उसने कहा क्यों मिस्री के पहाड़ पर आओ, कि मिस्री का स्वाद आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा हमको तो कोई स्वाद नहीं आया। अरे मिस्री का स्वाद नहीं आ रहा, मिस्री का पहाड़ कितना मीठा, देखो मुझे तो स्वाद आ रहा है कि हमको तो नहीं आया, बात क्या है? तुम्हारे मुंह में और कुछ चीज है क्या? कहा हाँ थोड़ा थोड़ा नमक तो है। तो भाई इस नमक को अलग रखो और अब तुम देखो। नमक को अलग किया तब जाकर मिश्री का स्वाद आया। ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि तुमको जो संसार में सुख की भ्रांति हो रही है, सुख का वहम हो रहा है, तो एक काम करो, मेरा भजन करो। तो तुमने संसार में सुख का तो वहम किया और मिला है नहीं, और मेरा भजन करोगे उसमें तुमको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, तुम्हारा वहम मिट जाएगा। हमने अब तक जीवन में एक तरफ ही सुख देखा है, दूसरे सुख का ज्ञान नहीं है। संतों ने दोनों ही सुखों को देखा है, संसार का भी देखा और परमात्मा का भी देखा। देख करके निर्णय किया कि अनित्यम और असुखम। संसार में यदि सुख होता तो न तो भगवान हमको बोलते और न संत महात्मा हमको बोलते कि तुम भगवान का भजन करो। देखो दो तीन बातें हैं खास। संसार का सुख यदि हमको बहुत अच्छा लगता है तो ये सुख है, ये दूसरों के लिए त्याग है, दूसरों को दें। जैसे आपको धन में सुख दिखता है तो धन कमाओ और परिवार वालों को दे दो, बोल लो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी सेवा में लगा देते हैं। ऐसे करके आप सौंपते जाओ, आपको खुद को लगेगा अरे इसमें काय का सुख है, त्यागने से सुख, देखो जो सुख हमको प्रिय लगता है वो दूसरे के लिए त्याग देंगे तो उसमें से हमको दूसरा ही सुख मिलेगा। फिर उस जहां सुख देखते थे गलती से, वो गलती मिट जाती है। परिवार में रहते हो एक दूसरे से लेने की इच्छा से रहते हो, सब हमको ही सुख दे दे। वो शास्त्रों में लिखी हुई बात, भागवत की लिखी हुई बात बोलते हैं, आप नाराज मत होना कि कुटुंब और परिवार वाले जो लोग हैं ये सब लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। वो उससे लेना चाहता, वो उससे लेना चाहता, वो उससे लेना चाहता, वो उससे कुछ न कुछ चाहता है। एक एक अपना स्वार्थ एक एक से पूरा करने का एक समुदाय हो गया, एक संगठन हो गया, उसका नाम परिवार हो गया। सुख की भ्रांति हो गई, सुख नहीं मिलेगा इसमें। सुख केवल दिखता है पर मिलता नहीं है। डूंगर है, पर्वत है, वो दिखने में बड़े हरे दिखते हैं पर वहां जावे तो पता चले डूंगर बड़ा हरा है। जाके देखो भाई, डूंगर में इतनी हरेली, पेड़ बहुत सीधे सीधे हैं वहां अलग अलग लगता है। राहो साहब कितना हरा हरा है। ऐसे ही एक देखने से भ्रांति होती है, उस भ्रांति को हमने निर्णय मान लिया। चलो मान लिया सो मान लिया, होगी सो होगी गलती। सत्संग करते हुए तो यहां से थोड़ा उठना पड़ेगा और भगवान के भजन में एक छिपा हुआ आनंद है, उसको विश्वास के साथ लेना पड़ेगा। देखो संसार का सुख तो हमको तत्काल मिलता है और भगवान के भजन का सुख कालांतर में मिलता है, तो तत्काल सुख को हम छोड़ नहीं सकते, हमारी कमजोरी है। तत्काल जो सुख मिलता है उसको तो छोड़ सकते नहीं, और भगवान का जो सुख है वो कालांतर में मिलता है, तो उधर हमारा विश्वास नहीं। इसलिए कहा कि साधना का जो मार्ग है उसमें थोड़े धैर्य की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखो। भगवान पर और संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करो कि उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, अपने तो भगवान के भजन में लग जाओ। अब ये भजन है ये अपने आप स्वयं हमको ज्ञान भी करा देगा, सब करा देगा, ये जाने इसका काम जाने। जिसका हम भजन करते हैं वो भगवान हमारे रक्षक हैं। तो अनित्यम और असुखम दोनों देकर के भगवान बताते हैं कि मैं नित्य हूं और मैं सुख वाला आनंद वाला हूं। भगवान नित्य हैं, भगवान सुख वाले हैं, ये विशेषण भगवान ने अपने लिए दिया नहीं हो। क्यों नहीं दिया? कि जो कुछ है सब भगवान ही है। ये बात जब समझ में आ जाएगी तो वो साधक के मन में बात बैठ जाएगी कि वास्तव में भाई भगवान में आनंद है, आनंद है। संसार को दुखालय बताया, दुखालय। अभी आपको कहा जाए ना कि आप भोजनालय में चलिए, तो भोजनालय में जाएंगे वहां पर पुस्तकें थोड़ी मिलेंगी, कपड़े थोड़े मिलेंगे, वहां भोजन मिलेगा। कैसा पुस्तकालय में चलिए तो वहां पर पुस्तक मिलेगी, भोजन थोड़ा ही मिलेगा। वस्त्रालय में चलो वहां पर वस्त्र मिलेंगे, वहां पर दूसरी चीज थोड़ी ही मिलेगी। ऐसे ही भगवान ने साइन बोर्ड लगा दिया, क्या दुखालयम, ये संसार क्या है? दुखालय है, दुखालय। जहां आपने सुख का वहम किया वहां आप मन में सोच लो कि यहीं से दुख मिलेगा। इतना पहले थोड़ा समझ भी लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इतनी बात पहले ही समझ ले कि संसार में भाई कहीं सुख है नहीं, ये खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। परंतु ये समझ अपनी चाहिए। और इतना सब कुछ है कि भाई सब भगवान में हमको भजन करने से सुख मिलता है, तो ये बात जितनी मन में दृढ़ धारणा होगी उतना ही भजन करने का भाव भी अपने आप बन जाएगा। भगवान में भजन करने का भाव बनेगा। भागवत में लिखा है कि धावन निमील्यवान नेत्रे न स्खले न पदे दिए। आंख बंद करके इस मार्ग में चलो, कहीं गिरोगे नहीं, पड़ोगे नहीं, ठोकर लगेगी नहीं। इतना भगवान की तरफ चलने का मार्ग निरापद है। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अपने मन में एक वहम है कि यदि हम भगवान के भजन में लग जाएंगे तो संसार का काम बिगड़ जाएगा। महाराज जी कहते संसार का काम बन भी गया तो एक दिन बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो भी बिगड़ेगा। हमारे चलाने से, हमारे करने से नहीं होता है। हमारे भाग्य में होगा वैसा होगा। संसार के काम को भी करो तो अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा ही करना है। हमको संसार का काम भगवान की आज्ञा है इसलिए करना है। सेठ जी ने कहा कि हमको कोई सत्संग करवावे, मंच पर बैठा करके सत्संग की बात कहलवावे और हमसे पत्थर तोड़वावे। पत्थर बैठा सड़क पर बैठ जाओ, पत्थर तोड़ो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्संग का काम भी भगवान का काम है, और सड़क पर बैठ करके पत्थर तोड़ावे हमसे तो वो भी भगवान का ही काम है। हमारे दोनों कामों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिया कोई बड़ी और छोटी नहीं होती, उसके पीछे भाव होता है, वो बड़ा और छोटा होता है। भाव हमारा भगवान की भक्ति का होना चाहिए। व्यापार करने से मुक्ति होती है, ऐसा सेठ जी ने लेख लिखा कि ये व्यापार करना क्या भगवान का काम है, भगवान की दुकान है। मेरा परिवार है ये भी भगवान का है। कि साहब हमने भगवान का मान लिया, अरे भगवान का मान लिया, सुपुर्द तो कर दिया, लेकिन अंत में चिंता किसको होती है? कहने से नहीं होगा, ये मानने से होगा, ईमानदारी से काम होगा। ये दो नंबर का धंधा नहीं है, ये बिल्कुल ईमानदारी से। यदि हमने ईमानदारी से भगवान को अर्पित कर दिया तो हमारे काम के बिगड़ने का दुख नहीं होगा। तो भगवान जाने, भगवान का काम जाने। व्यापार करो, दुकान करो, जो करना है सो करो, लेकिन उसको भगवान का मान के करो। भगवान का काम है ये, क्योंकि मैं भगवान का, ये परिवार भगवान का, तो ये आजीविका का साधन ये भी भगवान का ही काम है। इसमें मैं हर्षों क्यों करूं, मैं काम को अच्छा करूं। सकता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षो लोक संग्रहम। जैसे संसार में आसक्त व्यक्ति काम करता है, जानकार व्यक्ति को, बुद्धिमान को, सत्संगी को काम तो वैसे ही करना चाहिए। कुर्याद विद्वांस तथा सक्त है, वही सुबह दुकान खोलो, दुकान पर जाओ, दुकान पर बैठो, ग्राहकों से बात करो, सब प्रकार से जो व्यवहार है वो करो, लेकिन भीतर में ज्ञान रखते हुए, प्रकाश रखते हुए। प्रकाश रखते हुए करो, भीतर की शक्ति को, अपने सत्संग के विचारों को कायम रखते हुए करो। अब व्यापार में यदि खूब मुनाफा हो जाएगा, आप पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मुनाफे में राजी हो गए तो भाई सब दिन होतन एक समान, कभी घाटा भी लग जाएगा, घाटा लग जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो भगवान का व्यक्ति कभी तकलीफ नहीं पाता, जो अपने को भगवान के अर्पित कर दे, भगवान क्यों तकलीफ पाए। इसलिए भाई जीवन में भगवान को महत्व दो। हम लोग क्या है, सत्संग करने वाले एक अध किचरी अवस्था में आते हैं, मध्यम श्रेणी में आते हैं। जैसे और चीजों के साथ, और व्यक्तियों के साथ संबंध है, उस संबंध में एक चीज को माने, हाँ भगवान भी है। भगवान को स्वीकार तो करते हैं, परंतु थोड़े हल्के पुल्के रूप से स्वीकार करते हैं। तो भाई फिर हल्का पुल्का ही लाभ होता है, ठोस रूप से स्वीकार नहीं करते ना, इसलिए अपने को ठोस फल भी नहीं मिलता। ठोस रूप से स्वीकारो नहीं, भगवान ही है जीवन में, भगवान ही है हमारे लिए, बाकी सब चीजें हैं ये अपनी जगह होंगी। खास हमारे निजी हैं तो भगवान है, भगवान के समान कोई हमारा अपना नहीं है, और है भी नहीं वास्तव में। हमारे हम कोई मान रहे हैं तो कोई झूठी थोड़ी मानते हैं, संतों ने कहा इसलिए मानते हैं। दुनिया में सब बातें सुन सुन करके ही माने, ये हमारी माँ है सुन करके माना है, जान करके थोड़े ही माना है। पिता है तो ये हमने सुन करके माना है, जान करके थोड़े ही माना है, सुन करके माना है। विवाह हो गया तो ब्राह्मण ने कह दिया ये तुम्हारी पत्नी है, तो सुन लिया उसे, तो पत्नी स्वीकार कर लिया। ये सब बातें स्वीकृति की है। ऐसे भगवान को स्वीकार करना, उसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाना हो तो भगवान इस संसार में लगाओ। भगवान को तो सहज भाव से स्वीकार करो, बस भगवान है। क्यों, संतों ने कह दिया, महात्माओं ने कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया, उनकी वाणी में पवित्रता है, सत्यता है, हितैषिता है, कल्याण है, मोक्ष है उनकी वाणी में, इसलिए हम उनकी वाणी को स्वीकार करते हैं। प्रामाणिकता है, उन्होंने इस चीज को समझा है इसलिए कहा है। तो ये बातें अपने जीवन में आनी चाहिए। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। जिसके जीवन में भगवान के प्रति आस्था नहीं है, उसका जीवन पशु से भी गया गुजरा है, पशु से भी नीचा है वो। भगवान में आस्था नहीं, भगवान को स्वीकार ही नहीं किया, भगवान को मानते ही नहीं। भगवान को नहीं मानेंगे तो पवित्रता कैसे आएगी जीवन में, पवित्रता कैसे आएगी। डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि बहुत बड़े कोई संत होंगे, हमारा अंतःकरण बड़ा पवित्र निर्मल होगा, तभी हम भगवान को मान सकते हैं, जान सकते हैं, नहीं तो भगवान हमको स्वीकार नहीं करते, ये बात है ही नहीं। भगवान ने आज तक किसी को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि गीता में तो यहां तक कहा कि अपिचेत सुदुराचार है। कितना ही कोई दुराचारी हो, सुदुराचार माने दुराचार में अच्छा दुराचारी। अच्छा दुराचारी कौन, खूब बढ़िया सांगोपांग दुराचारी हो। भाई जी ने कहा एक दुराचारी एक दुर्दुराचारी, एक सुदुराचारी एक दुर्दुराचारी। दुराचार में कुछ कमी रख देवे वो दुराचारी। दुराचार में बिल्कुल कमी नहीं है, ऐसा सुदुराचारी होता है वो भी। यदि मन में यदि घबरा करके, हे भगवान मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, मैं आपका हूँ, तो भगवान कहते हैं क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। कैसे कैसे पापी पापी लोगों का उद्धार हुआ है, ऐसे तो पाप किए ही नहीं अपन ने, सोच ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे पाप करने वालों को भी भगवान अपना लेते हैं, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्ष इष्यामि, इससे ज्यादा भगवान क्या बोलेंगे भाई। अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्ष इष्यामि, मैं तुमको पापों से मुक्त कराऊंगा। क्या हम नरकों में चले जाएंगे भगवान ने, कोई बात नहीं, नरकों में जाओगे ना, तुम्हारा हाथ पकड़े पकड़े नरकों में साथ साथ चलूंगा मैं। यमराज जी कहेंगे कि महाराज इसको क्या करना है, चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यमराज जी तुमको दंड नहीं देंगे, आराम से नरक में घूम करके आ जाना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर अपना हाथ मेरे हाथ में दे तब ना। हम तो भगवान के नाम से हाथ खींचते हैं और संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, और तेजी से दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात संतों को इस बात से हुई है कि जिसको हम लोग पाप मानते हैं वो पाप भी हम नहीं छोड़ पाते, वो पाप भी नहीं छोड़ पाते। गर्भ में प्राणी है क्या, उसको भी मार दो, क्या अधिकार है भाई। जब हम किसी को जिला नहीं सकते तो मारने का क्या अधिकार है। गर्भ में प्राणी आया है उसको मारने का अधिकार किसने दिया। हम नहीं चाहते, हमका ये अवांछित गर्भ है, हम नहीं चाहते, माने हम लड़की है हम नहीं चाहते, इसलिए मार दो। तो भाई ऐसा सिद्धांत यदि अपने पर कोई लागू कर देगा तो, कि हम भी आपको इस संसार में देखना नहीं चाहते तो अपने को ही मारेगा, वो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। तो फिर भाई इसका मतलब है कि मारना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और वो आपका बच्चा है, आपका बच्चा, वो आपके द्वारा आरोपित है। विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम, एक जहर का पौधा भी यदि कोई हमने लगा दिया तो अपने हाथों से उसको काटना ये अच्छा नहीं है। शास्त्रों में आती विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रम असाम्प्रतम, वो बालक या बच्चे जो गर्भ में है वो उसके निमित्त कारण खुद हैं, और उसको मारने के लिए हम कह रहे हैं मारो इसको। कोई अन्याय की सीमा है, बड़ा भारी अन्याय है, इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इतना अन्याय है। हमारा धर्म कोई आदमियों की संख्या से जीवित नहीं होता, एक व्यक्ति भी सदाचारी है तो वो धर्म सुरक्षित है। धर्म तो आचरण के ऊपर जीवित रहता है। साहब हम हिंदू हैं, साहब क्यों क्या पता है, अभी इतने सारे हम हिंदू हैं, अरे तुम्हारे हिंदूपने का आचरण है कि नहीं, आचरण तो नहीं है तो काहे के हिंदू। और यदि संख्या की दृष्टि से भी देखेंगे तो संख्या की दृष्टि से देखने पर देखो आगे जाकर के ये दशा हो रही है कि हिंदुओं के लिए इस पृथ्वी पर सिवाय भारतवर्ष के अलावा कहीं जगह नहीं है। वर्तमान के नक्शे में जो हम लोगों को पृथ्वी नजर आती है, वहां हिंदू धर्म के लिए जगह केवल भारतवर्ष में है, और भारतवर्ष में हम लोग संख्या कम की तरफ जा रहे हैं। आगे चलते चलते अपनी पीढ़ी आएगी, वो हमारे नाम के ऊपर थूकेगी कि देखो हमारा बहुमत था, हम सब कुछ थे, हमारे हाथ में धर्म संस्कृति राज्य सब कुछ था, लेकिन कितना सत्यानाश किया उन लोगों ने कि आज हम लोगों को छोटा सा बना करके यहाँ रख दिया और विधर्मियों की हमको गुलामी करनी पड़ती है। कितना वो नुकसान भोगना पड़ेगा, उसकी भरपाई नहीं हो रही। करोड़ों करोड़ों गर्भपात हो रहा है प्रतिवर्ष। एक बार एक आंकड़ा आया तो फिर आंकड़ा आना बंद कर दिया। और ये बात क्या है, हमारे राजनेता धर्म पर विचार नहीं करते। वो देखते हैं कि हमको विदेशों से ऋण लेना है तो विदेशी लोग भारतवर्ष को ऋण देते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि भारतवर्ष में संख्या ज्यादा है, ये ऋण चुका नहीं सकेंगे, तो कहे तुम परिवार नियोजन कर लागू करो, तुम्हारी संख्या कम करो, तब तुम ऋण दे पाओगे। तो आज इतना ऋण है कि एक एक आदमी पर 7,000-8,000 का ऋण है, एक एक आदमी पर इतना विदेशी ऋण आया है। वो कहेंगे तुम्हारे यहाँ जो कुछ पैदा होती है वो तुम्हारे यहाँ प्रजा में लग जाएगा, हमको वापस ऋण कैसे चुकाओगे, इसलिए तुम जो है परिवार नियोजन करो, संख्या कम करो, तुम्हारा खर्चा कम होगा और फिर हमको ऋण दो, हमसे ऋण ले। फिर इसलिए राजनेता लोग सब कहते हैं परिवार नियोजन कराओ, परिवार नियोजन कराओ। परिवार नियोजन अपने लिए भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, कलंक। नाम रख दिया परिवार कल्याण, जस्ती नहीं है अपने लोगों के। देख ज्यादा बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या इतनी तो बहुत छोटा सीमित विचार कर लिया। अरे सब अपना भाग्य लेकर के आते हैं, सब अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं, भगवान सबको पूरते हैं। यादवों की सेना के लिए बताया कि एक नील केवल सैनिक थे उस समय, एक नील 10,000 को 10,000 से गुणा करने पर फिर 1,00,000 से गुणा कर दो, ये लिखा है भागवत में। अयुत अयुत और लक्ष उसका साहब वो गुणा करके 10,000 को 10,000 से गुणा करके जो गुणन फल आता है वो लाख से गुणा करो। तो एक नील केवल सैनिक थे, नील कितना होता, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 100 खरब केवल सैनिक थे। सैनिक, अब उन सैनिकों के माँ बाप भी होंगे, भाई बंधु भी होंगे, उन सैनिकों के स्त्रियां भी होंगी, उन सैनिकों के बच्चे भी होंगे। एक यदुवंश की संख्या बताइए, भरण पोषण उनका तो हो गया और अब जो संतान पैदा होगी उनका नहीं होगा, कैसे ये संभव है भाई। महाराज जी की बात कितनी दार्शनिक बात थी, कितनी गूढ़ बात थी कि भाई यदि ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो उनका प्रबंध करना चाहिए कि संख्या को ही मारना चाहिए, प्रबंध किया जाए। सरकार का तो काम है जीते जागते आदमी का प्रबंध करे, और प्रबंध करो। तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं, आविष्कार करो, बहुत सी जमीनें पड़ी उन जमीनों में उपजाओ, और हम लोग स्वीकार कर रहे हैं परिवार नियोजन को। अब ठीक है बाबा, छोटा परिवार ठीक है, एक एक व्यक्ति को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हमारे धर्म की क्या दशा होगी। और आपको कौन सा सुख मिल जाएगा इसमें, आपको कौन सी शांति मिल जाएगी? परिवार नियोजन करा लोगे, कौन सी शांति मिल जाएगी? नहीं शांति मिलेगी। पाप कर लिया ना जीवन में, शांति कैसे मिलेगी? उदाहरण क्या देते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, तो देख लो 100 क्यों पांडवों ने बस में कर लिया, कम थे इसलिए। अरे कम थे इसलिए किया कि वो पांडवों ने धर्म का आचरण किया इसलिए पांडव विजयी हुए। पांडवों के पक्ष में धर्म था, पांडवों के पक्ष में भगवान थे, और कौरव 100 थे लेकिन पापी थे। तो बताना ये चाहते हैं कि संख्या में चाहे पापियों की संख्या कितनी हो, लेकिन उनके पास पाप है तो उनका नाश होगा। अब वो यदि पाप हमने इस कर लिया तो हमारा नाश होगा। तो पाप है ये सदा हल्का होता है, पाप में शक्ति नहीं होती, पाप जल्दी मरता है। तो बताना तो ये था उनको, उसका उल्टा अर्थ ले लिया। कम संख्या थी कौरवों की, ये पांडवों की, इसलिए जीत गए साहब। युधिष्ठिर महाराज ने कहा वयम पंच वयम पंच वयम पंच शतंच ते, हम 5 हैं लेकिन वो 100 हैं, लेकिन ये हमारे आपस का विवाद है। अन्य सांग कृते चाहिए, दूसरा कोई हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम 105 हैं। तो 5 का और 100 का विभाग आपस में था, दूसरे के लिए 105 थे। चित्रांगद या चित्ररथ नाम का एक गंधर्व था, उसने दुर्योधन को पकड़ लिया और शिविर में ले गया, दुर्योधन को मारने लगा और दुर्योधन को कहा कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तूने इतना हमारे साथ अत्याचार किया। युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि दुर्योधन को चित्ररथ ने पकड़ लिया है, गंधर्व ने, और वो उसको मार देगा, और गंधर्व बड़े बलवान है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन से और अर्जुन से कहा तुम लोग जाओ और उसको छुड़ाओ। भीमसेन ने कहा भाई साहब कर क्या रहे हो, वो स्वयं अपनी मौत से मर रहा है, मरने दो ना उसको, दुर्योधन को ही तो पकड़ा है, कोई अपने 5 में से किसी को पकड़ा है क्या? अरे नहीं, देख जहां दुर्योधन के साथ अपना बैर है वो देखा जाएगा, आज दुर्योधन के साथ बैर नहीं देखना है, आज दुर्योधन का पक्ष लेना है। तब अर्जुन गए, अर्जुन जाकर के और चित्ररथ के सामने खड़े हो गए। चित्ररथ मेरे भाई को छोड़ना पड़ेगा। उनका अरे तेरे लिए तो मैं सब कुछ कर ही रहा हूं, तू इंद्र का बेटा है तो तेरे पक्ष में होकर के तो हम दुर्योधन को करें, हम देखते हैं तुमको काम ना करना पड़े वो हम कर दे। कह नहीं, हमारे बड़े भाई की आज्ञा है, अब तुमको छोड़ना पड़ेगा या हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा युद्ध के अंदर ही तुम हमको मार दोगे तो हमारा घाटा, हम तुमको मार देंगे तो भी हमारा ही घाटा है, तो यदि ऐसा घाटा लगता है तो भैया आप छोड़ दो इसको। युद्ध भी हुआ वहां, फिर इंद्र ने समझा करके छुड़वा भी दिया, परंतु दुर्योधन के वो छुड़वा दिया उन्होंने। तो कहां की बात किधर लागू करते हैं, किधर की बात किधर टेकते हैं। रामायण में एक चौपाई आएगी के राम जी के, भरत जी के, लक्ष्मण जी के, शत्रु जी के दो दो बालक हुए, दुई बालक। तो एक हॉस्पिटल में लिखा हुआ था यूं परिवार नियोजन वाले हॉस्पिटल में कि दो दो बालक हुए। अब उन कहा कि देखो तुम परिवार नियोजन के द्वारा दो दो बच्चों का प्रमाण देते हो क्या? राम जी ने कोई परिवार नियोजन करवाया था क्या? भरत जी ने कि राम जी ने कि लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जी ने परिवार नियोजन से दो दो बच्चे किए थे क्या? ऐसा करते हो तो हम कृष्ण भगवान का उदाहरण रखेंगे। 16,108 रानियां थी, 10-10 बच्चे और एक एक बच्ची थी, आ जाओ। क्यों हमारे शास्त्रों की बातों को किधर के मोड़ के किधर ले जाते हो? ये देखो ये ऐसे भयंकर पाप हैं कि इन पापों को हम सहजता से करते करते हम भगवान को और शांति को और कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, असंभव बात है। जैसे कोई आदमी छाती पर अंगारा रख ले या खीरा रख ले और अगर जलन हो रही है हमको कैसे शांति मिले, अरे वो कैसे शांति मिले, तुमने तो अंगारा तो छाती पर रख लिया, पाप तो हम अंदर कर ही रहे हैं, जहर गिट लिया और जीना चाहते हैं। भाई जहर गिट लिया आप कैसे जियोगे, परिवार नियोजन करा लिया ये साहब, अब हो तो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसका भी उपाय है, एक तो अब आगे अपने परिवार में ध्यान रखो कि भाई हमने गलती कर दी, वो आप गलती मत करना, पहली बात। दूसरी बात है कि रहन सहन एकदम सीधा साधा करके भगवान के भजन में ही लग जाओ, भगवान के भजन से सब पाप दूर होते हैं। नित्य प्रति हर दम भगवान का भजन करो, भगवान के भजन के बिना कोटि करो उपाय। संतों ने कहा कितना ही करोड़ों उपाय कर लो दिल की जलन न जाए। दादू कहते पचमवे दिल की जलन न जाए, भगवान के भजन करने से ही शांति मिलेगी भाई, और किसी उपाय से मिलेगी। जिसमें तो पाप कर लिया फिर उनको तो ज्यादा उस पाप पाप में से जो निकल गए ज्यादा उनको जो है भजन में लगना चाहिए, घबराते हुए करना चाहिए, घबराते हुए। जैसे कोई आदमी अपराध कर लिया और राजा के सामने ले जाया जाए वो घबराता, जाने किस आंख से देखेंगे कितना दंड देंगे, ऐसे घबराओ अपने पाप से फिर भगवान का भजन करो। इसके अलावा कोई चारा अपने को इस कलयुग में दिखता नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है भाई, भगवान के भजन से ही पार पड़ेगी। वही एक हमारे सहारा है, वही हमारा, हम पर दया उनकी काम आएगी, और कोई उतनी दया कर सकता नहीं, करेगा तो अपने स्वार्थ जितनी दया करेगा, सो बार एहसान जताएगा वो, लेकिन भगवान ऐसे हैं जो एहसान भी नहीं जताते, दया करने में कोई कमी नहीं रखते, केवल उनको पुकारने की जरूरत है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
राम,
जय सीताराम
सीताराम सीताराम, जय सीताराम,
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय
राम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।